लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है, लगी लगन बस एक।
ओम शांति। बहुत समय पहले जैन धर्म के संस्थापक महावीर इस धरती पर थे। उस समय एक कहानी उनसे जुड़ी है। एक बार उनसे मिलने एक राजा आया, और वो राजा जो था उनका बचपन का मित्र था। और ये जो राजा था अब भी अपने राज में अपनी धन संपत्ति में डूबा हुआ, और जब उसे पता चला कि मेरा मित्र, बचपन का मित्र, एक बहुत बड़ा योगी बन गया है, तो वो राजा महावीर से मिलने आया। और जब महावीर के तपस्या स्थली के समीप पहुंचा तो उसने देखा वहीं पर एक दूसरा राजा तपस्या कर रहा है, परंतु वो राजा अब महावीर का शिष्य बन चुका है, और वो जो दूसरा राजा है वो भी महावीर का और इस राजा का बचपन का मित्र है। तीनों ही मित्र, एक तो महावीर बन गए, दूसरा ये जो मिलने आया, और तीसरा जो पहले ही शिष्य बन गया है और वहां पर बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, एक पैर पर खड़ा है, कम से कम वस्त्र और कठिन यातनाएं, ध्यान मग्न है। तो ये जो राजा है जो अपने मित्र महावीर से मिलने आता है, और जब देखता है ये दूसरा राजा, तो उसके मन में आत्मग्लानी होती है। इस राजा का नाम था प्रसन्नसेन। तो प्रसन्नसेन के मन में बहुत ग्लानी होती है कि मेरा एक मित्र इतना महान तपस्वी बन गया, और दूसरा भी अपने सारे राज्य को छोड़कर यहां पर बैठकर तपस्या कर रहा है, और मैं ही एक हूं तीनों में से जो कि अब भी संसार में फंसा हुआ है। तो वो प्रसन्नसेन राजा महावीर के पास जाता है और कहता है कि अभी अभी मैंने उस राजा को देखा जो अपना ही बचपन का मित्र है। और वो प्रसन्नसेन महावीर से पूछता है कि यदि यह राजा जो यहां पर तपस्या कर रहा है अपना सारा राज्य छोड़कर, यदि अभी अभी उसने शरीर छोड़ दिया, तो वो कहां जाएगा? तो महावीर कहते हैं कि वो जो राजा या शिष्य या अभी जो तपस्या कर रहा है एक पैर पर खड़ा होकर, उसने यदि अभी अभी शरीर छोड़ दिया तो वो सीधा नरक में जाएगा। तो राजा प्रसन्नसेन, उसको धक्का लगता है वो कहता है ऐसे कैसे, वो तो इतनी घोर तपस्या कर रहा है, अपना सारा राज्य छोड़कर आया हुआ है, और उसने यदि अभी शरीर छोड़ दिया तो वह सीधा नरक में जाएगा। क्यों? तो महावीर उसको बताते हैं कि आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले यहां से कुछ सैनिक गुजरे और वो सैनिक आपस में बात कर रहे थे उस राजा को देखकर जो कि अभी राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गया है। वो सैनिक कह रहे थे कैसा मूर्ख राजा है, इतना अच्छा राज्य सब कुछ छोड़कर सन्यास लेकर बैठा है, यहां तपस्या कर रहा है। और ये जब वो सैनिक कहते हैं तो इस राजा को अंदर से क्रोध आता है जो तपस्या कर रहा है, और सैनिक कहते हैं कैसा मूर्ख राजा है कि इसे ये भी नहीं पता कि इसके ही जो कर्मचारी है अब योजना बना रहे हैं पूरे राज्य को हड़पने की। और ये जो राजा था आंखें बंद कर एक पैर पर खड़ा उनकी बातें सुनता है, पहले तो क्रोध आता है और जैसे ही सुनता है कि कुछ कर्मचारी है राज्य के वो राज्य को हड़पना चाहते हैं तो एकदम से उसका हाथ जैसे मन ही मन पीछे जाता है जहां पर तलवार होती है और उसने तलवार निकाल दी है और मन ही मन सोच रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए मेरा राज्य ले ले, ना तो कोई तलवार है, परंतु उसने तलवार हाथ में ले ली अदृश्य मन ही मन। जब ये सुना कि सिपाही कह रहे हैं मूर्ख है, क्रोध आ गया। जब सिपाहियों ने कहा कि दूसरे कर्मचारी राज्य ले रहे, इतना क्रोध आया कि अभी वो मारने ही वाला है या मन ही मन मार ही दिया। इसलिए महावीर कहते हैं जब और उसी समय थोड़े देर के बाद तुम वहां से गए। इस राजा को कहते हैं प्रसन्नसेन। तपस्या तो वो राजा कर रहा था परंतु मन में क्या चल रहा था? क्रोध। तपस्या तो वो कर रहा था परंतु मन में हिंसा। तपस्या तो वो कर रहा था पर मन में बदले का भाव। तो ये कोई तपस्या नहीं जिसमें बाहर से तपस्या की जाए और मन कुछ और कर रहा है, कुछ और सोच रहा है और थोड़ा समय हो जाता है। फिर महावीर उस प्रसन्नसीन राजा से कहते हैं हां परंतु अभी थोड़ा समय हो गया है और यदि अब वो राजा शरीर छोड़े तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो प्रसन्नसेन पूछता है क्यों? क्योंकि अभी वो जो राजा था अब ये सोच रहा है कि मैं भी कैसा मूर्ख हूं, सारा राज छोड़ दिया, सारा राजपाट छोड़ दिया, उसके बाद भी क्रोध। अभी अभी मन में जो कुछ चला उसके लिए वो पश्चाताप कर रहा है। इसके लिए महावीर कहते हैं पर अभी उसने शरीर छोड़ा तो हां अब वो स्वर्ग जाएगा। तप का संबंध आंतरिक मनस्थिति से है। तप आंतरिक साधना है। तपस्या दो प्रकार की है, एक बाह्य तपस्या एक अभ्यंतर तपस्या। एक्सटर्नल तपस्या इंटरनल तपस्या। एक्सटर्नल तपस्या अर्थात उपवास करना, एक्सटर्नल तपस्या अर्थात कपड़े बदलना, पहले कुछ और पहनते थे अभी कुछ और पहन रहे। एक्सटर्नल तपस्या अर्थात स्थान बदल देना। बाह्य तपस्या अर्थात तिलक लगा देना, बालों को कुछ कुछ कर देना। आंतरिक तपस्या में सारा परिवर्तन अंदर होता है। बाह्य वैसा भी रहा तो चलेगा, परंतु तपस्या अर्थात इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, इसको तपस्या कहा जाता है। यदि सब कुछ छोड़कर उस राजा की तरह सब कुछ कर रहा है परंतु मन में हिंसा, मन से ही किसी की हत्या कर दी, बाह्य में बाहर कुछ भी नहीं है, वो तपस्या नहीं है। तपस्या के और तीन प्रकार बताए हैं, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। सात्विक तपस्या अर्थात निस्वार्थ की हुई तपस्या, विश्व कल्याण के लिए की हुई तपस्या। राजसिक तपस्या स्वार्थ जिसमें समाया है, राजसिक तपस्या जिसमें दमन है, सप्रेशन है, बहुत सारी चीजें जबरदस्ती की जा रही है, जैसे साइलेंस अंदर से नहीं निकला है, जबरदस्ती रखा है और हो नहीं रहा है, फिर भी बोल रहे हैं, इशारों से भाषा भाषण कर रहे हैं, वो जिस तपस्या में दमन है, सप्रेशन है, उसे राजसिक तपस्या कहा जाता है या जबरदस्ती की हुई तपस्या। तीसरी है तामसिक तपस्या। तामसिक तपस्या अर्थात शरीर को बहुत पीड़ा देना, बहुत सताना, ऐसे तीन प्रकार की तपस्या है। हमें करना है सात्विक सतोप्रधान ईश्वरीय तपस्या, ऐसी तपस्या कि जिससे चिरकाल तक परिवर्तन आ जाए, लंबा समय तक बदलाव आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, वो तपस्या हमको करनी है। तो आज की इस भट्टी में, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे तप के बल की, तपस्या कैसे करें। इस तपस्या में ऐसी 10 बातें हैं, तपस्या के 10 घटक, 10 पॉइंट्स, 10 प्रिंसिपल्स, 10 सिद्धांत, 10 आवश्यक बातें जो कि तपस्या में चाहिए। सबसे पहली बात जो तपस्या के लिए अत्यंतिक आवश्यक है, 10 बातों में से पहली बात है मौन, साइलेंस। बिना साइलेंस के कोई भी तपस्या की नहीं जा सकती। यदि व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक अविरत अनवरत बोलते रह रहा है तो तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या के लिए साइलेंस चाहिए। सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज, इस आवाज से थोड़ा सा ऊपर, इस आवाज से परे मौन। दो प्रकार के मौन हैं, स्थूल और सूक्ष्म, मुख का और मन का। जब मन का मौन हो जाता है अपने आप मुख का होता है, परंतु मन का मौन इतना आसान नहीं है, इसलिए स्थूल मौन की आवश्यकता है। मन के मौन से पहले मुख के मौन की आवश्यकता है। मौन व्रत यदि हो सके तो हफ्ते में एक बार, यदि नहीं हो सकता है तो दिनचर्या में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय, कुछ कुछ घंटा मौन। मौन हमारी ऊर्जा को बचाता है, संरक्षण करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक जितना बोलता है और जितनी एनर्जी उसकी वेस्ट होती है बोलने में, यदि वो चुप रहे तो उसमें बहुत सी ऊर्जा रहेगी और जीवन की बहुत सारी बातें उसे समझ में आएगी और जीवन की बहुत सारी मुश्किलें, समस्याओं का हल उसे मिलेगा। यदि वो केवल क्या हो जाए, चुप। साइलेंस में बहुत पावर है, ऐसा लगता है सबको। एक दिन हम सुबह से लेकर रात तक बोलते रहे और एक सेवा करते रहे, दूसरा दिन वही सेवा कर रहे परंतु बोल नहीं रहे या कम से कम बोल रहे हैं। जो ये करके देखे उनको अनुभव होगा कि जिस दिन नहीं बोला उस दिन थके नहीं, उस दिन बहुत पावर अंदर महसूस हो रही है, और जिस दिन बोल रहे और सेवा कर रहे हैं साथ साथ, शाम तक रात तक थक जाते हैं। थकान काम से नहीं आती है, थकान व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल से आती है। यदि कोई चुप होकर अपनी सेवा, अपना कार्य, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य करे या कम बोलकर, तो उसकी ऊर्जा बचेगी, जमा होगी। तपस्या अर्थात किसी जंगल में जाकर बैठकर तपस्या करना नहीं है। वो राजा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, राजमहल, राजपाट, परंतु जैसे ही सुना सैनिक उसकी हंसी उड़ा रहे उसे क्रोध आ गया, जैसे ही सुना कोई और उसका राज्य लेने का प्रयत्न कर रहा है उसके हाथ में तलवार आ गई, युद्ध के लिए तैयार हो गया, हिंसा का भाव जागृत हो गया, जबकि बाहर से वो एक पैर पर बैठकर तपस्या कर रहा है परंतु अंदर नरक। ये तपस्या नहीं है। मौन जितना गहरा होगा उतना गहरा अध्यात्म में अनुभव होगा, जितना मौन उथला होगा, सुपरफिशियल, सतही, आर्टिफिशियल, ऊपर ऊपर का दिखावे वाला, उतना ही अनुभव कम। और मौन कोई दिखावे की वस्तु नहीं। यहां साइलेंस का बैच लगा दिया और हो गया काम, इससे मौन का संबंध नहीं। मौन अर्थात चुप रहना नहीं है, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात स्वदर्शन, मौन अर्थात अंतर्मुखी। तपस्या के लिए 10 बातों में सबसे पहली बात है मौन। तो कब मौन रखेंगे सभी, कौन से समय पर मौन रखेंगे? कब मौन धारण करेंगे? कब धारण करेंगे? सुबह 8 बजे तक, जितना हो सके जब तक अपने कार्य में नहीं जाते तब तक साइलेंस। अमृत वेला किया, अमृत वेले के तुरंत बाद बोलना नहीं चालू कर देना है। जो भी घर के कार्य है या जो भी काम है, चुप रह के मौन में रहकर 7 बजे तक। फिर मुरली, मुरली में बोलने की आवश्यकता नहीं है, एकाग्र होकर सुनने की आवश्यकता है। उसके बाद में भोजन बनाना या नाश्ता करना, उसमें भी अत्यधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहकर सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, फिर 9 बजे के बाद तब धीरे धीरे बोलना चालू करना है। और जैसे ही काम पूरे होते हैं, जो भाई है नौकरी करते हैं, फिर से घर में आने के बाद फिर से साइलेंस। किस किस समय मौन रखा जाए या लिया जाए दिनचर्या में, उस पर काम करना है। भोजन मौन, मुरली मौन, भोजन बनाना मौन, ट्रैवलिंग मौन, लिखना मौन, कोई काम करना मौन, जहां बात करने की आवश्यकता नहीं वहां मौन की संपदा को जमा करना है, ट्रेजर है, खजाना है। एक साथ जमा कर लेना कभी कभी कठिन है, थोड़ा थोड़ा जमा करना है। दूसरा है एकांत, सॉलिट्यूड। दूसरा है एकांत। एकांत भी 2 प्रकार के हैं, एक है स्थूल एकांत, दूसरा है सूक्ष्म एकांत। स्थूल एकांत अर्थात सॉलिट्यूड, अर्थात ऐसी निर्जन जगह पर जाना, ऐसे स्थान पर जाना जहां और कोई नहीं, मनुष्य नहीं, भीड़ नहीं, आवाज नहीं। दूसरा एकांत है सूक्ष्म एकांत, एक परमात्मा के याद में अंत में खो जाना। यह तो बहुत ऊंची अवस्था है। इस ऊंची अवस्था की शुरुआत स्थूल एकांत से होगी। पहले स्थूल एकांत, फिर सूक्ष्म एकांत। पहले स्थूल मौन, फिर सूक्ष्म मौन। पहले मुख का मौन, फिर मन का मौन। तो दिनचर्या में बीच बीच में क्या करना है, एकांत में जाना है। कहां पर जाएंगे, कहां एकांत ढूंढेंगे? बाबा का कमरा, बाबा का कमरा जहां पर एकांत होता है। एक और क्या, कहां? स्थूल, स्थूल पूछ रहे हो। एक बाबा का कमरा, दूसरा गार्डन, तीसरा छत, चौथा स्थूल एकांत कहां मिलेगा? वॉक, लॉन्ग वॉक, चलना सुबह सुबह या शाम। यहां पर जगह बहुत है, कहीं पर भी जा सकते हैं। अपने आप को एक चिंतन देना और निकल जाना, सोचते सोचते ज्ञान की एक पॉइंट। आज कहा ना, विष्णु अर्थात मनन करने वाला, बाप के खजाने को अपना बनाने वाला, तो हर्षित रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तो अपने आप को एक पॉइंट, टॉपिक देना है और फिर मनन करते जाना है। तो स्थूल एकांत को ढूंढना है अपनी व्यस्त दिनचर्या में, ग्रॉस सॉलिट्यूड। जो व्यक्ति निरंतर व्यक्तियों के बीच रहता है और उनसे ही वार्तालाप करते रहता है और कभी उनसे बाहर नहीं निकलता, वो अध्यात्म में इतनी ऊंचाई में नहीं पहुंच सकता। तीसरा है अंतर्मुखता। तीसरा अंतर्मुखता। अंतर्मुखता अर्थात अपने मुख को अंदर कर लेना, अर्थात खुद को देखना, अर्थात खुद के अंदर झांकना, अर्थात स्वयं की चेकिंग करना, सेल्फ एनालिसिस, खुद ही खुद को देखना, क्या पाया है क्या खोया है। जब जब से भगवान के बने तब से अब तक क्या मिला और क्या खो दिया, क्या मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया। जैसे वो राजा प्रसन्नसेन जैसे ही महावीर के पास आता है आत्मग्लानी हो जाती है, मेरे ही दोनों मित्र और कहां से कहां पहुंच गए और मैं कहां भोग विलास में डूबा हुआ हूं। एकदम अंतर्मुखी हो गया। अब तक बाह्य मुखी था राज्य में, राजा के कारोबार में डूबा हुआ था, परंतु जैसे ही देखा कि एक मित्र यहां तपस्या कर रहा है और एक तो महान योगी अंदर बैठा है और मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों कहां से कहां चले गए और मैं अभी भी डूबा हुआ हूं। आत्मग्लानी हुई ना उसे। तो अंतर्मुखता अर्थात स्वयं से बातें, अंतर्मुखता अर्थात अपने आप को देखना। सुबह मुरली में प्रश्न आया, सबने सुनी, सुबह भी बताया, स्वयं को देखना है मैं क्या बनूंगा। सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरने जैसा बना हूं या चंद्रवंशी सीता, कहां तक पहुंचा हूं। कल की मुरली ये बहुत लंबी याद की यात्रा है, लंबी मुसाफिरी है, थकना नहीं है इसमें, भूलना नहीं है। आज हंसे कल भुला ना देना। तीसरा पॉइंट है अंतर्मुखता। क्या करेंगे उसके लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए क्या करेंगे? जोर से क्या करेंगे? क्या करेंगे अंतर्मुखी बनने के लिए? अपनी दिनचर्या की चेकिंग करेंगे, अर्थात अंतर्मुखी बनने के लिए विधि है सेल्फ चेकिंग। प्रश्न लिखे हो हमारे पास, नए नए प्रश्न मुरली से निकालने हैं रोज, नए प्रश्न, और जो देखे रात में और चेकिंग करें, ये बाबा ने कहा है मैंने किया, तो फिर धक्का लगेगा और लगेगा कि अब मुझे अंदर देखना है, अंदर चेकिंग करनी है। दूसरों को बहुत सुना दिया, अब खुद को सुनाना है। और क्या करेंगे अंतर्मुखी बनने के लिए? एक सेल्फ चेकिंग और लिखना। क्या करेंगे? लिखेंगे अपने मन की स्थिति को, लिखना, डायरी राइटिंग, या तो डायरी या तो चार्ट लिखना। और अंतर्मुखी बनने के लिए क्या करेंगे, बातें करेंगे। किससे? बाप से बातें करना, भगवान से बातें करना, उसे अपने दिल का हाल सुनाना, पत्र लिखना, या तो मौखिक ओरली या तो लिखकर। तो तीसरी बात है अंतर्मुखी बनना। जब तक अंतर्मुखी नहीं तब तक तपस्या शुरू नहीं हो सकती। चौथा है कर्मेंद्रिय जीत। तपस्वी अर्थात जितेंद्रिय, तपस्वी अर्थात इंद्रजीत, मास्टर ऑफ सेंसेस, पांच इंद्रिय है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध। पांचों इंद्रियां इन पांचों की तरफ भागती है, रूप आंखें, रस जीभ, शब्द कान, स्पर्श त्वचा, गंध नाक। पांच रस पांच इंद्रिय भागती है रसों के पीछे, योगी अर्थात जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को क्या करना है, वश में रखना है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसे हाथ लगाना है किसे हाथ नहीं लगाना है, किसे सूंघना है किसे नहीं सूंघना है। पांचों रसों को वश में कर लेना अर्थात कर्मेंद्रिय चीत बनना, इंद्रिय चीत बनना। जिसकी इंद्रिय भाग रही है बाहर अनकंट्रोल्ड, वो कभी योगी नहीं बन सकते। जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं, देखने पर कंट्रोल नहीं, सुनने पर कंट्रोल नहीं, खाने पर कंट्रोल नहीं, तीनों ही बातें, योगी बनना मुश्किल है। तो योगी अर्थात जितेंद्रिय, तपस्वी अर्थात जितेंद्रिय। कौन सी इंद्रिय है जो मुझे धोखा देती है, इसकी चेकिंग करनी है। कान धोखा देता है, बाबा कहते हैं दरबार लगाओ रात में। मैं आत्मा राजा, ये इंद्रिय ये विकार किसने धोखा दिया। चौथा है कर्मेंद्रिय चित। पांचवा इच्छाओं से मुक्त। कौन सी इच्छा है? सांसारिक इच्छा है, लौकिक इच्छा है, संसार में डुबोने वाली जागतिक इच्छा है। वर्ल्डली डिजायर्स। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा है वो उतना ही भगवान से दूर, जिसकी सांसारिक इच्छा है जितनी कम वो उतना भगवान के समीप। एक कृष्ण धर्म में एक बात सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो कि कभी भगवान से बहुत प्रेम करता था, हमेशा चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, परंतु धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ गया, धीरे धीरे इतना एक्सपांशन हो गया कि चर्च जाना बंद हो गया, धीरे धीरे बाइबल पढ़ना बंद हो गया, प्रार्थना करना छूट गया। सुबह से लेकर रात तक केवल पैसा 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 पैसा। अब ये प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी, अभी ये संपत्ति, अब वो संपत्ति, अभी ये जमीन, अभी वो जमीन। इतना ज्यादा उसमें व्यस्त हो गया और डूब गया कि उसकी जो बाइबल थी वो उसके कार में जो डॉक्यूमेंट्स का खाना था उसमें पड़ी रहती थी, इंश्योरेंस पेपर और वो सारे। उसको देखने का भी उसे टाइम नहीं था। और भगवान को पूरी तरह भूल चुका था, याद ही नहीं उसे कि वो क्या था किसी जमाने में। अब सुबह से लेकर रात तक भागना भागना भागना, पैसे कमाना, जमीन धन इसी में डूबा। एक दिन वो अपनी कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। पर एक्सीडेंट मामूली सा था, चोट कुछ खास नहीं आई, परंतु उसे पता था कि ये एक्सीडेंट में मैं मर भी सकता था, इतना भयंकर एक्सीडेंट था। और वो वहीं पर पड़ा रहता है जब तक ये एम्बुलेंस ना आ जाए। थोड़ी बहुत खरोचे लगती है, और उस बीच वो जो कार का ड्रावर होता है वो खुलता है और वो देखता है, तब तक इंश्योरेंस के पेपर निकाल के रखूं, कार को थोड़ी चोट लगी है। और एकदम वो बाइबल उसके हाथ में आती है, वो अचानक खोलता है उसमें, और उसमें एक चैप्टर होता है टिमोथी, जिसमें एक लाइन लिखी रहती है, वी हैव ब्रॉट नथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी विल गो आउट विथ नथिंग इन आवर हैंड्स। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और इस संसार से हम खाली हाथ जाएंगे। उसकी नजर उस वाक्य पर पड़ती है और एकदम से करंट लगता है उसे, क्योंकि उसे पता है कि अभी अभी जो एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में मैं मर भी सकता था, और यदि मैं मर गया होता तो फिर क्या, जो इतना सारा जमा किया है सब कुछ धरा के धरा रह जाता, क्यों मैं भाग रहा हूं। और एकदम से उसको रियलाइजेशन होता है, रुक जाता है, और तब फिर वापस दूसरे दिन से जो उसकी पहले की दिनचर्या थी, चर्च जाने की और बाइबल पढ़ने की और प्रार्थना करने की, फिर से वो शुरू करता है। क्या हुआ बीच में, धक्का लगा, जबरदस्त धक्का। अभी कि अभी शरीर छूट गया होता तो नाउ इसी पल हमारी क्या अवस्था है, अभी यहीं पर बैठकर शरीर छूट गया तो किस अवस्था में हम जाएंगे। पांचवा है इच्छाओं से परे। सांसारिक इच्छाएं अनंत है, जैसे समुद्र के पास खड़े रहो, समुद्र की लहरें आती ही जाती है, एक जाती है दूसरी आती है। इच्छाओं का स्वभाव भी वैसा है, एक इच्छा पूर्ण दूसरी प्रकट होती है। और इच्छा एक बार पूरी हो गई और कुछ मिल गया, उसके बाद व्यक्ति तुरंत दुखी हो जाता है। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है कि इस संसार में दो प्रकार के दुखी लोग हैं, एक तो वो जो कोई चीज चाहते हैं या कोई वस्तु चाहते हैं, कोई साधन चाहते हैं, परंतु उनको नहीं मिलता। दूसरे वो जो कोई चीज चाहते हैं, साधन चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, पद चाहते हैं, और उनको वो मिल जाता है, वो भी दुखी है। जिसको चाहिए और नहीं मिला वो दुखी, और दूसरा जिसको चाहिए था और वो मिल गया फिर भी दुखी। घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, दिन रात घर का सोचता है, 5 साल लगते हैं घर बनाने के लिए, कर्जा लेता है, सब कुछ करता है, 5 साल तक बेचैन रहता है, भागता है, भाग दौड़ करता है, और एक दिन घर बन जाता है, घर में अंदर रहने जाता है, परंतु 5 साल का बेचैनी का संस्कार साथ में लेकर जाता है। और वो घर बनने के बाद भी दुखी रहता है। इच्छाओं के स्वभाव को समझना है। इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने कहा है, इच्छाएं दुष्पूर है पाली भाषा में, इनसेशियबल। एक पूरी होती है, दूसरी उठती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उठती है, क्रम चालू रहता है, और व्यक्ति अतृप्त, दुखी, उदास, सारा जीवन उदास रहता है। तो तपस्या में 5वीं चीज कौन सी है? सांसारिक इच्छाओं को कम करना, यदि मुक्त नहीं हो सकते तो कम से कम। एक तरफ संसार और एक तरफ भगवान, दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे, एक ही लड्डू मिलेगा। सिक्स पॉइंट, तपस्या अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। आज की मुरली में शुरुआत में बाबा ने कहा है, जो भगवान को नहीं जानते और याद करते, ऐसी याद व्यर्थ है, ऐसी याद से कोई फायदा नहीं है। संसारिक लोगों के लिए कहा। यहां पर भी यदि कोई तपस्या कर रहा है और आत्माभिमानी स्थिति नहीं बना रहा है, तो तपस्या जो भी करे, परंतु मुख्य है स्वयं को जानना, भगवान को जानना। ये दो बातें उसमें नहीं आ रही है तो वो तपस्या नहीं। तपस्या अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। कितना समय सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं और कितना समय सोल कॉन्शियस विजन है, आत्मिक दृष्टि है। सुबह बहुत अच्छी तपस्या की, परंतु जैसे ही बाहर गए, दैहिक दृष्टि हो गई या देहभान आ गया, तो वो तपस्या नहीं। इसलिए दिनचर्या में भी बीच बीच में क्या करना है, ड्रिल करनी है। कल की मुरली थी ना, साकार मुरली। बाप तुम्हें रूहानी ड्रिल क्यों सिखाते हैं? क्या उत्तर था कल की मुरली में? प्रश्न पूछा था बाबा ने, क्या करने के लिए? पहलवान बनाने के लिए। तो बीच बीच में दिनचर्या में ड्रिल करनी है। तो अभी अभी हम एक ड्रिल करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। छोटी सी ड्रिल। ड्रिल में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। मस्तक पर चमकती मणि। मैं एक तपस्वी आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, चमकता सितारा, एक तेज पुंज, संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, संपूर्ण अंतर्मुक्ता। इंद्रिय जीत स्थिति, इच्छा मात्रम अवस्था, सभी इच्छाओं से मुक्त, इच्छाओं की संपूर्ण अविद्या, मैं एक तपस्वी आत्मा, मुझ आत्मा से तपस्या की किरणें दूर दूर तक फैल रही, संपूर्ण वायुमंडल तपस्या से भर गया। मैं एक महान तपस्वी हूं, ओम शांति। तपस्या अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, तपस्या अर्थात आत्मिक दृष्टि। सेवेंथ पॉइंट, तपस्या अर्थात परमात्मा प्रेम में मगन अवस्था, तपस्या अर्थात ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय लगन में मगन, भगवान के प्यार में खोया रहना, अपने आप में तपस्या है। और जो इस अवस्था को पाता है उसे और किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी संपदा है। अपने भगवान के प्यार को बढ़ाना है तो बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? जो बाबा से अभी जो प्यार है वो बढ़ जाए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे, और क्या करेंगे? बाबा से जो प्राप्तियां हुई है उनको याद करना, उनका मनन करना, बाबा से हमें जो जो मिला है उसे क्या करना है, याद करना है, शुक्रिया करना है, धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड लाना है, उसने हमें क्या क्या दे दिया, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? आज्ञाकारी बनेंगे। बहुत अच्छा, भगवान का आज्ञाकारी बनना तो उससे प्यार बढ़ेगा, और क्या करेंगे? सर्व संबंध उससे जोड़ना, सर्व संबंध उससे जोड़ना, सर्व संबंधों का अनुभव करना तो उससे प्यार बढ़ेगा, और क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो उससे प्यार बढ़ेगा, और जोर से बाबा का वरदानों को जीवन में धारण करेंगे और जोर से बोलना है, धीरे धीरे नहीं, यहां तक आवाज नहीं आती आपकी। हाँ, रोज मुरली सुनेंगे और वो तो सुन रहे हैं, विचार सागर मंथन करना उसमें सब आ गया, और दिल से याद करना है, और उसके सुंदरता को, इस संसार में वो हसीन मुसाफिर है, उसके जैसा सुंदर इस संसार में और कोई नहीं, ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम है, उसमें जो सुंदरता है, सुंदरता का वो सागर है, ओशन ऑफ ब्यूटी, उससे अधिक सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है, उसके सामने संसार में जो भी है सब कुछ तुच्छ है। तो तपस्या अर्थात परमात्मा प्रेम में मगन, बाबा के प्यार को क्या करना है, इमर्ज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, तपस्या अर्थात फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप, ये तपस्या की बहुत ऊंची परिभाषा है। साकार में ब्रह्मा ने जो जो किया वो सब करना, उसके ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां आई, विरोध किया, अपमान किया, लोगों ने नीचे गिराया, सब कुछ किया, परंतु वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहा। फॉलो फादर अर्थात तपस्या, तपस्या की ये बहुत ऊंची परिभाषा है। उसके लिए पहले जिसको फॉलो करना है उसका जीवन स्टडी करना पड़ेगा। यज्ञ में किताब है जीवन को पलटाने वाली, अद्भुत कहानी, किस किस ने पढ़ी है और बाकियों ने? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, जब तक वो नहीं पढ़ी तब तक फॉलो क्या करना है कैसे पता चलेगा? जब तक किसी भी संस्था की तरफ हम जाते हैं तो उसका जो हेड होगा, सबसे पहले उसका जीवन पढ़ो क्या है, उसने क्या कहा वो बाद में, उसने क्या किया और वो कैसे था, कहां उसका जन्म हुआ, क्या क्या उसकी बातें उसके जीवन में हुई, जब तक लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती उस व्यक्ति की, उस संस्था को, उसने जो कहा उसको नहीं समझा जा सकता। केवल नारे लगाने से होगा क्या, फॉलो फादर फॉलो फादर फॉलो फादर? अरे फॉलो फादर पर क्या फॉलो फादर, किस बात में फॉलो फादर? तो क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेंगे सभी? कहां से पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ना सभी को आता है? जिसको जिसको आता है हाथ खड़े करो। हिंदी जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए फिल्म बनी हुई है आदिदेव, किस किस ने देखी है? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर बनी फिल्म किसी ने नहीं देखी? उसमें पूरा जीवन लिखा है। बच्चों की एक छोटी सी फिल्म बनी है बच्चों के बाबा, एनिमेशन मूवी, वो देखी है? वो भी नहीं देखी है? देखा है पर सबने नहीं देखी है। बाबा का पुस्तक तो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। लाइफ स्टोरी नहीं पढ़ी यज्ञ के संस्थापक की तो यज्ञ कहां से समझ में आएगा? खाली मुरली पढ़ने से नहीं होगा। मम्मा की जीवन कहानी किसने पढ़ी? किताब है मम्मा, बस। बाकियों ने? बाकियों ने नहीं पढ़ी? तो अगले 2 मास में सबको काम दे रहे हैं, ये 2 किताबें पढ़नी है। पहली किताब ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, Volume 1, Volume 2, Part 1, Part 2, 2 पार्ट है। दूसरी किताब मम्मा, ये 2 किताबें, 2 या 3 किताबें हो गई टोटल। अगले 2 मास में सबको ये पूरी करनी है, ठीक है? ये किताब मिल जाएगी इधर? नहीं मिल जाएगी तो भगवान को ढूंढ लिया, किताब तो ढूंढ ही लोगे। किताब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, जिन्होंने भगवान को ढूंढा वो किताब तो ढूंढ ही सकते हैं। कहीं से भी ढूंढो, जिसको चाहिए वो ढूंढ ही लेगा। वेर देर इज अ विल देर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। तो फॉलो फादर केवल नारा ना रह जाए, फॉलो फादर केवल, उसको हिंदी में कहते हैं तकिया कलाम, केवल एक ही शब्द जो बार बार रिपीट किया जाता है, तोते जैसा रिपीट करते रहना, करना कुछ नहीं। तो पहले तो उसका जीवन स्टडी करो, क्या क्या हुआ सिंध हैदराबाद में, क्या क्या विरोध हुआ, क्या क्या एंटी ओम मंडली ने किया, कैसे कैसी यातनाएं सहन करनी पड़ी, पुलिस केस कैसा हुआ, हापुड़ में क्या हुआ, कैसा हंगामा हुआ, ब्रह्मा कुमारी इसके विरुद्ध लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र किए, और कैसे फिर सिंध हैदराबाद से कोर्ट केसेस, और वहां से फिर कैसे कराची में गए, कराची में कैसी तपस्या की 12 साल, और फिर वहां से कैसे 1950 में भारत में माउंट आबू में आए, माउंट आबू में आने के बाद क्या क्या हुआ, ब्रिज कोटी, वहां से कहां गए, पहले कहां आए, फिर कहां गए, फिर कहां गए, फिर पांडव भवन कैसे बना, फिर पांडव भवन में क्या क्या हुआ, सामने सामने आ जाएंगे, सामने सामने आ जाएंगे। जो जो ये काम करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, अब बाबा की जीवन कहानी और मम्मा की जीवन कहानी जो जो पढ़ेंगे हाथ खड़ा करो, और बाकी नहीं पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तो फॉलो फादर, फॉलो फादर अर्थात फादर ने जो जो किया वो करना। पहले फादर कौन था उसको स्टडी करो, फादर की जीवन कहानी क्या है उसको स्टडी करो, कैसे फादर ने उसके जीवन में आई हुई सब समस्याओं को, विघ्नों को, परिस्थितियों को पार किया, क्या क्या ब्रह्मा ने तपस्या की मधुबन में बैठकर, एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करते रहे, और सारे विश्व में किरणें फैल गई एक ही स्थान पर बैठकर। कितनी कठोर तपस्या होगी, कितनी कॉन्सेंट्रेटेड तपस्या होगी, तो तपस्या अर्थात 8th point फॉलो फादर। अगली पॉइंट तपस्या अर्थात बेहद का वैराग, तपस्या अर्थात बेहद का वैराग। जो आत्मा संसार से चिपकी हुई है, पकड़े हुए है, जो आत्मा लगाव में है, झुकाव में है, आसक्ति में है, आकर्षण में है, वो तपस्वी बन सकती है। तपस्या अर्थात अंतिम चैप्टर क्या है ब्रह्मा का, नष्टो मोहा, और निरंतर याद, जहां बुद्धि संसार में फंसी हुई है वहां तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या अर्थात बुद्धि को सभी हदों से निकालना, सभी लगाव से, झुकाव से, आसक्ति से, मोह से, टेम्पटेशन से, अट्रैक्शन से निकालकर ऊपर करना, सभी चीजों से, संसार के सारे सौंदर्य प्रसाधन, संसार के साधन, संसार की बातें, संसार की खबरें, न्यूज, संसार के एंटरटेनमेंट, संसार का फैशन, मेकअप, श्रृंगार, वैरागी आत्मा अर्थात इन सब से जिसको वैराग है, इंटरेस्ट नहीं है शरीर को सजाने में। सुना ना संडे क्रीम और पाउडर क्या है? साफ पाउडर लगाना अर्थात क्या लगाना? तपस्या अर्थात देहत का वैराग। जैसे ही उस कहानी में उस व्यक्ति ने अपना ड्रॉवर खोला और वो किताब निकाली बाइबल, और उसमें जैसे ही उसने पढ़ा कैसा धक्का लग गया उसको कि हम ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। नथिंग वी हैव ब्रॉट अन टू दिस अर्थ एंड नथिंग वी टेक आउट फ्रॉम दिस अर्थ। वैराग आ गया। तपस्या अर्थात वैराग। लास्ट पॉइंट, तपस्या अर्थात महात्याग, सर्वंश त्याग, त्याग वो हर चीज जो श्रीमत के विरुद्ध है, वो हर श्री चीज जो हमारे और भगवान के बीच में आती है, उसको क्या कर देना है? त्याग, छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है उसको। अगर वो कोई व्यक्ति है हटा दो उसको, यदि कोई संबंध है हटा दो उसको, यदि कोई साधन है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी है इस संसार का, त्याग। त्याग में बल है, पावर। जो कम त्याग करेगा उसको कम बल मिलेगा, जो बीच का त्याग करेगा उसको बीच का बल मिलेगा, जो ज्यादा त्याग करेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा, जो सब कुछ त्याग करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। चार ऑप्शन है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? कम, मध्यम, ज्यादा कि सब कुछ? टिक मार्क करो कौन सा चाहिए। सब कुछ सोच लो, मुश्किल है सब कुछ चाहिए कहा तो। सब कुछ कहा तो मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और स्थूल कुछ छोड़ना है नहीं, सब छोड़ना सूक्ष्म है। सबसे बड़ा त्याग मैं का त्याग है। एक सन्यासी के पास एक गृहस्थी आता है और वो गृहस्थी कहता है, आप कितने बड़े त्यागी हो, आपने सारे संसार का त्याग कर दिया, आपसे बड़ा त्यागी तो संसार में और कोई है ही नहीं, आपने इतने बड़े संसार का त्याग कर दिया। वो सन्यासी कहता है, मेरे से बड़े त्यागी तो तुम हो। वो कहता है, मैंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया, मैं कहां से त्यागी हुआ? तो वो सन्यासी कहता है, देखो भगवान की इतनी अथाह संपदा, इतना बड़ा परमात्मा खुद और इतना बड़ा उसका प्यार, इतने सारे भगवान के खजाने, वो सब कुछ छोड़कर, वो सब कुछ त्याग करके तुमने इस शूद्र संसार को पकड़ के रखा है, ये तो तुम्हारा बड़ा त्याग है मेरे से। त्यागी मैं नहीं, तुम हो। भगवान यहां इतने खजाने दे रहा है, वो लेना छोड़कर संसार के क्षुद्र खजाने तुमने पकड़ के रखे हैं। तो तपस्या अर्थात हर चीज का त्याग करना जो तपस्या में बाधा हो, तपस्या अर्थात उस हर चीज का त्याग करना जो तपस्या में डिस्टर्बेंस हो, तपस्या अर्थात हर चीज का त्याग जो भगवान और मेरे बीच में आ रही है, चाहे कितनी भी अच्छी दिखाई दे रही है ऊपर से वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, स्थान, परंतु वो यदि बीच में आ रहा है तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है। और ये सारी क्रियाएं स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, मानसिक है। तो ऐसी तपस्या की यह 10 बातें स्वयं में धारण करनी है तो फिर तप का बल जमा होगा, तपस्या का अपना बल है। कौन कौन सी बातें फिर एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मौन, साइलेंस। दिनचर्या में कहां कहां साइलेंट हो सकते हैं ढूंढना है, एक। दूसरा है एकांत, कौन कौन से स्थान है जहां जाकर हम एकांत का सेवन करें, ढूंढना है। जहां हमारा घर है उसके इर्द गिर्द आस पास कौन से ऐसे स्थान है जहां पर एकांत है। तीसरा अंतर्मुखता, उसके लिए क्या करेंगे, 3 बातें बताई। एक सेल्फ चेकिंग, दूसरा बाबा से बात करना, तीसरा लिखना। चौथी पॉइंट कर्मेंद्रिय जीत, कौन सी इंद्रिया गुलाम है। हमारा एक मित्र था, उसकी माताजी जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाती थी एक चीज छोड़कर आ जाती थी। किसी तीर्थ स्थान पर गई, जिलेबी छोड़ दी, फिर अगले साल दूसरे तीर्थ स्थान पर गई, समोसा छोड़ दिया। ऐसी उसने बहुत सारी चीजें छोड़ के रखी थी। जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएगी पहले अपने मन को तैयार करेगी कि इस स्थान पे जाने के बाद अभी ये चीज खाना बंद। चौथा है कर्मेंद्रिय जीत, पांचवा इच्छा मात्रम अविद्या, सांसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं बहुत भटकाती है इच्छाएं। जब तक, जब कुछ भी नहीं था हमारे पास और बाजू वाले के पास साइकिल आ गई तो लगा कि हमें भी एक साइकिल चाहिए। फिर हमने बहुत मेहनत की और साइकिल खरीद ली, और जब हमारे पास साइकिल आ गई तो बाजू वाले के पास स्कूटर आ गई, फिर दुखी हो गए। साइकिल नहीं थी इसलिए दुखी थे पहले, अब साइकिल आ गई पर आने के बाद भी दुख है। साइकिल ने दुख को मिटाया ही नहीं, क्यों, क्योंकि बाजू वाले के पास तब तक क्या आ गई, स्कूटर आ गई। फिर बहुत मेहनत की और स्कूटर को लाया, परंतु जब स्कूटर आ गई तो स्कूटर के ना होने का दुख मिटा ही नहीं, क्योंकि तब तक उधर क्या हो गया, कार आ गई। और फिर हमने कार जमा की, बहुत पैसे जमा किए और एक दिन कार आ गई, परंतु जब तक कार आ गई तब तक बाजू वाले के पास लेटेस्ट कार आ गई, एसी वाली, और फिर हमारी कार बैलगाड़ी जैसी दिख रही है। ये भी कोई कार है? खटारा कार चाहिए तो वैसी वाली, अच्छी पावरफुल, दुख तो मिटा ही नहीं। तो पांचवा है इच्छाओं से परे, सांसारिक इच्छाएं। यदि सांसारिक इच्छा नहीं रखनी है तो कौन सी इच्छाएं रखनी है? फिर कौन सी इच्छाएं रखेंगे? कौन सी इच्छा रहनी चाहिए ब्राह्मणों की? कौन सी इच्छा रहनी चाहिए? 10 इच्छाएं बताओ जो रहनी चाहिए, और जोर से बताना यहां तक आवाज आए। अच्छा, तो बहुत छोटा शब्द है, समान संपूर्ण समीप, बाप समान बनने की इच्छा, मन में इच्छा उत्पन्न हो एसी कंपार्टमेंट में जाने की। कहां जाने की? एयर कंडीशन। सुबह मुरली सुनी ना कि कॉमन बोगी में जाके जनरल कंपार्टमेंट में जाके बैठेंगे। जनरल कंपार्टमेंट में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, बाबा के बन गए पहुंच जाएंगे। हां, परंतु एसी में चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो कौन सी इच्छा हो? एसी में जाने की इच्छा। दूसरी इच्छा कौन सी इच्छा रहनी चाहिए ब्राह्मणों को? निरंतर याद की इच्छा, निरंतर एक की याद में रहे यह इच्छा। और इच्छा कौन सी रहनी चाहिए? परमात्मा प्रेम बढ़ता जाए हर दिन, कल जितना प्यार था उतना आज उससे कहीं आगे हो। और कौन सी इच्छा होनी चाहिए? अतीन्द्रिय सुख की इच्छा, प्रभु मिलन की इच्छा, बाप समान बनने की इच्छा, बाप का संदेश सारे विश्व को देने की इच्छा, संसार की सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की इच्छा, संसार की सभी आत्माओं के हृदय में परमात्मा प्रेम प्रकट हो जाए यह इच्छा। सभी आत्माएं उसको जान ले, सभी आत्माएं ब्राह्मण बन जाए, सभी आत्माएं देवकुल में आ जाए, वर्षा लेने पहुंच जाए। तो सेवाओं की इच्छा। ज्ञान की कौन सी इच्छाएं होनी चाहिए? ज्ञान की कौन सी इच्छाएं होनी चाहिए? एक है ज्ञान, एक है योग, एक है धारणा, एक है सेवा। सेवा की बता दी, ज्ञान की कौन सी इच्छाएं होनी चाहिए? ज्ञान को धारण करने की इच्छा, ज्ञान को जीवन में लाने की इच्छा, ज्ञान का अध्ययन करने की इच्छा, ज्ञान का मनन करने की इच्छा, ज्ञान को समझने की इच्छा। योग में कौन सी इच्छा होनी चाहिए? पावरफुल योग करने की इच्छा, जिसमें नींद ना हो, व्यर्थ ना हो, निगेटिव ना हो, दिव्य गुणों की उद्धारण करने की इच्छा, शक्तिशाली बनने की इच्छा, स्पिरिचुअल पावर्स को स्वयं में भरने की इच्छा, अपनी कमी कमजोरियों को मिटाकर स्वयं को गुणवान बनाने की इच्छा। ये सारी इच्छाएं होनी चाहिए। और कौन सी नहीं होनी चाहिए? अब उसकी लिस्ट बताओ 10। कौन सी इच्छा नहीं होनी चाहिए? कौन सी इच्छा नहीं होनी चाहिए? परदर्शन, परमत, परचिंतन, परदर्शन, परमत। और क्या नहीं होना चाहिए? कुदृष्टि। इच्छा बताओ, इच्छा, इच्छा, इच्छा अर्थात चाहना, डिजायर। कौन सी डिजायर नहीं होनी चाहिए? अच्छा खाना, घूमना फिरना, साइट सीइंग, और क्या आता है? खाना पीना पहनना। हाँ, क्या करना? फिल्म। हाँ, सांसारिक एंटरटेनमेंट, सांसारिक मनोरंजन, चीप एंटरटेनमेंट, वस्तुओं का संग्रह करना, जमा करके रखना, कोई भी चीज मिले जगह जमा करके रख देना, ना तो खुद यूज करना ना दूसरों को यूज करने देना। हाँ, सम्मान की इच्छा, मान की इच्छा, पद की इच्छा, नाम की इच्छा, नाम हो जाए, पद मिल जाए, प्रेम मिल जाए सबसे, सेवा में मैंपन नहीं, इच्छा कौन सी नहीं होनी चाहिए, सेवा में नाम मान शान, वस्तुओं का संग्रह, सांसारिक इच्छाएं, धन की इच्छा, अत्यधिक धन, धन के पीछे पागल हो जाना भटका देता है। छठवा, छठवा वो हो गया, अभी दूसरा तपस्या का छठवा पॉइंट, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास। सातवा, फॉलो फादर, उसके लिए क्या करना है सबको पता चल गया ना, जीवन कहानी जाकर पढ़नी है, और जो पढ़ना बिल्कुल जिनको पसंद नहीं है वो देख लो आदिदेव, उसमें लिखा हुआ है, देख सकते, उसमें सब कुछ वर्णन है, चित्रित किया हुआ है। आठवा, बेहद का वैराग, नहीं बेहद का वैराग आगे है थोड़ा, उसके पहले परमात्मा प्रेम में मगन, बाबा से प्यार को बढ़ाना है, उसके बाद फॉलो फादर, उसके बाद बेहद का नौवा, बेहद का वैराग, और दसवा त्याग, महात्याग, सर्वंश त्याग, सर्वंश त्याग अर्थात मैंपन का भी त्याग, त्याग अर्थात त्याग, महात्याग अर्थात जो विशेषताएं है उसका जो अभिमान आता है उसका भी त्याग, और सर्वंश त्याग अर्थात ये जो मैं है वो मैं ही समाप्त हो जाए, वो सर्वोच्च त्याग है। इस पर भी मुरली चली हुई है। तो तपस्या की ऐसी 10 बातें अपने जीवन में धारण करनी है। अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।